आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रोताओं, भारत की बड़ी आदिवासी आबादी देश के वन क्षेत्रों और उनके आसपास रहती है। इन समुदायों का जीवन जंगल और उसके संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जंगलों में मिलने वाली महुआ, शहद, इमली, तेंदुपत्ता, लाख, बांस और औषधि जड़ी बूटियां केवल वन उपज नहीं है, ये उन लाखों जनजाति परिवारों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण आधार भी है। कई जनजाति परिवारों की सालाना आय का 20-40% हिस्सा लघु वनोपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से आता है। लेकिन इन जनजाति परिवारों के सामने एक बड़ी चुनौती है, कई बार कच्ची उपज को बिचौलियों के जरिए कम कीमत पर बेचना पड़ता है और इससे उत्पाद जुटाने वाले समुदाय को उनकी मेहनत के अनुपात में आय नहीं मिल पाती। इसी चुनौती को बदलने की कोशिश है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया ये मिशन जनजातीय समुदायों को केवल वन उपज का संग्रहकर्ता बनाए रखने के बजाय उन्हें उसके मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन और उद्यमिता से जुड़ने पर बल देता है। मिशन के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से संगठित किया जाता है, जहां स्थानीय उपज को बेहतर उत्पाद में बदलने और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जाती है। साथ ही सरकार लघु वनोपज के लिए पहले से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के जरिए भी आय को सुरक्षा देने का प्रयास करती है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन की शुरुआत किस तरह हुई, ये जमीन पर कैसे काम करती है और इस मिशन के अंतर्गत जनजाति समुदायों को कौशल, तकनीक और बाजार के स्तर पर किस तरह का सहयोग दिया जा रहा है। श्रोताओं, जनजाति समुदायों के लिए जंगल और उससे मिलने वाली उपज का संबंध केवल आर्थिक नहीं बल्कि उसकी पारंपरिक आजीविका से भी जुड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि लघु वनोपज से जुड़ी इस अर्थव्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित कैसे बनाया जाए। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बना वर्ष 1996 का पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया। इसके बाद वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस कानून ने वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए आजीविका से जुड़े अधिकारों को मान्यता दी। इसके अंतर्गत उन्हें गैर इमारती लघु वनोपज के संग्रहण और बिक्री का अधिकार दिया गया। लेकिन अधिकार मिलने के साथ एक और चुनौती सामने थी, उचित कीमत। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि बीते वर्षों में किए गए प्रयासों ने इन वन अधिकारों को आजीविका के अवसरों से जोड़ने और आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यदि बाजार में किसी उत्पाद की कीमत गिर जाए और संग्रहकर्ता को अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़े तो उसकी आजीविका सीधे प्रभावित होती है। इसी चुनौती को देखते हुए लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की व्यवस्था विकसित की गई। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के तहत 87 लघु वनोपजों के लिए MSP अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में भी जनजातीय संग्रहकर्ताओं को एक निर्धारित मूल्य के स्तर पर सुरक्षा मिल सके। लघु वनोपज में बांस, शहद, लाख, तेंदु या केंदु पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, जड़ें, कंद और इसी तरह के कई गैर इमारती वन उत्पाद शामिल हैं। इस व्यवस्था में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड की भूमिका महत्वपूर्ण है। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है। ट्राइफेड राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से निर्धारित MSP पर लघु वनोपज की खरीद करता है। इन एजेंसियों में जनजातीय विकास, सहकारी संस्थाएं और वन विकास निगम जैसी संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। वर्ष 2013-14 से अब तक राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था के तहत 2,67,954 मीट्रिक टन लघु वनोपज की खरीद की है, जिसकी कीमत 693 करोड़ 98 लाख रुपए रही है। इस अभियान की सोच केवल उपज खरीदने तक सीमित नहीं है। जनवरी 2020 में नीति आयोग ने जनजाति आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष कार्यक्रम को मिशन मोड में तैयार करने की सलाह दी। इसके बाद अक्टूबर 2020 में कौशल विकास और रोजगार सृजन से जुड़े मंत्रियों के समूह ने प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम नाम से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की। इसी पृष्ठभूमि में पहले से चल रही दो व्यवस्थाओं को मिलाकर जनजाति विकास मिशन की अवधारणा तैयार की गई। एक ओर था लघु वनोपज के लिए MSP और वैल्यू चेन डेवलपमेंट का तंत्र, जिसमें वन धन योजना शामिल थी। दूसरी तरफ जनजाति उत्पादों के विकास और विपणन के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की व्यवस्था, इन दोनों को एक व्यापक मिशन के रूप में भी जोड़ा गया। वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुई थी। इसके तहत जनजातीय संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। लगभग 15 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलाकर एक वन धन विकास केंद्र बनाया जाता है, जिसमें करीब 300 सदस्य हो सकते हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य केवल उपज इकट्ठा करना नहीं है, यहाँ लघु वनोपज और अन्य जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन और विपणन के लिए सामूहिक व्यवस्था विकसित की जाती है। इस तरह जनजातीय विकास मिशन का मॉडल केवल ये नहीं कहता कि जंगल से उपज लेकर बाजार में बेचिए, बल्कि प्रयास ये है कि जंगल से उपज आए, समुदाय उसे संगठित करे, उसका मूल्यवर्धन हो, उत्पाद तैयार हो और फिर वो बाजार पहुँचे।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से कच्ची वन उपज से आगे बढ़कर सामुदायिक उद्यम तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। आज तक 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2,911 कार्यरत हैं और इनसे 12,48,000 जनजाति सदस्य जुड़ चुके हैं। लेकिन किसी भी उद्यम की सफलता केवल उसके ढांचे से तय नहीं होती, इसके लिए कौशल, तकनीक, वित्त, बुनियादी सुविधाएं और बाजार, इन सभी की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के अंतर्गत जनजाति समुदायों को ये सुविधाएं किस तरह उपलब्ध कराई जाती हैं और एक वन धन विकास केंद्र जंगल की उपज को बाजार तक पहुंचाने में क्या भूमिका निभाता है, आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत जनजातीय समुदायों को कौशल, तकनीक, वित्त, बुनियादी ढांचे और बाजार से जोड़ने के लिए सहायता का एक पूरा तंत्र विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत होती है कौशल विकास से। वन धन विकास केंद्रों में लघु वनोपज संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें वैज्ञानिक तरीके से उपज एकत्र करने, उसके प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को उनकी स्थानीय जरूरत के अनुसार प्राथमिक प्रसंस्करण के उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें कटिंग और सीविंग उपकरण, डिकॉर्टिकेटर, ड्रायर और पैकेजिंग से जुड़े उपकरण शामिल हैं। यानी जिस उपज को पहले कच्चे रूप में बेचा जाता था, उसे स्थानीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया से गुजारकर अधिक उपयोगी और बाजार योग्य उत्पाद में बदलने की क्षमता विकसित की जाती है। इस काम के लिए बुनियादी ढांचे की भी जरूरत होती है। वन धन विकास केंद्रों को लाभार्थी के घर, सरकारी भवन या ग्राम पंचायत भवन में स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भंडारण और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय जरूरतों के लिए स्वयं सहायता समूह को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSTFDC के साथ जुड़कर कार्यशील पूंजी की सुविधा दिलाने का प्रयास किया जाता है। मिशन में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वन धन विकास केंद्रों के सदस्यों को आगे चलकर वन धन प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन उत्पादन और प्रसंस्करण के बाद अगली चुनौती है बाजार तक पहुंच। इसके लिए वन धन विकास केंद्रों को स्थानीय हाट बाजारों से जोड़ा जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे 5,000 से अधिक हाट हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थायी ढांचे, भंडारण, पेयजल, छाया और वजन की सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जनजातीय उत्पादों को स्थानीय बाजार से आगे ले जाने के लिए मेले और प्रदर्शनी आयोजित किए जाते हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विकसित करने पर भी जोर दिया जाता है। ट्राइफेड की ओर से वन धन विकास केंद्रों को बाजार से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें दैनिक दरों और ई कॉमर्स के अवसरों से संबंधित जानकारी शामिल होती है। इससे उत्पादक समूहों को अपने कारोबार से जुड़े निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्रोताओं, जब स्थानीय संसाधन स्थानीय समुदाय के हाथों में रहकर उत्पाद और उद्यम का रूप लेते हैं, तो वन आधारित आजीविका केवल आय का साधन नहीं रहती, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन जाती है। यही सोच एक ऐसी जनजाति अर्थव्यवस्था की दिशा दिखाती है, जिसमें परंपरा और आधुनिक बाजार, स्थानीय संसाधन और नई तकनीक तथा सामुदायिक स्वामित्व और उद्यमिता एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।